अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने पैदा किया तुमको किस तरह, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान से पैदा किया उसने तुम्हें, यानी इंसानों तुम्हारा ओरिजिन जो है ना, इसीलिए पूरी इंसानियत को कहा गया, सिर्फ मुसलमानों तुम नहीं आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, बाकी काफिर कोई और से आए, नहीं सब के सब तुम एक आदम की औलाद, एक जान से पैदा हुए। इससे हमें ये बहुत बात समझ आई कि इंसान बंदर से नहीं आगे इवॉल्व होके इंसान बना, कि पहले बंदर होते थे फिर वो बनते बनते आगे तरक्की करते करते एक दिन इंसान बन गए। यही आज कहते हैं ना साइंस के अंदर, ये थ्योरीज निकाली नहीं है ना, तो आज क्यों नहीं बंदर इंसान बन जाते, कोई चीज भी नहीं इंसान बनती, जो जो है वैसे ही रहता है, आज भी इवॉल्व हो जाए ना वो। नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं एक जान से पैदा किया, वह खलक मिनहा ज़ौजहा, और पैदा किया उससे उसका जोड़ा यानी बीबी हव्वा को, आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। वो सो रहे थे, जब सो के उठे तो अपने पास अपनी बीवी को पाया तो उससे मानूस हो गए, उससे मानूस हो गए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल को बहलाने के लिए हजरत हव्वा को बना दिया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए किसी मर्द को नहीं बना दिया। आप ये बात नोट करें कि अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को बनाया, मर्द के लिए अल्लाह कोई मर्द भी बना सकता था कि आदम जैसा ही एक और आदम बना देता, तो मर्द से मर्द की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, और ना ही मर्द से मर्द की जो जिनसी जरूरत है वो पूरी हो सकती। ये औरत ही को अल्लाह ने बनाया कि जो मर्द के साथ जोड़ा बनती है, जो आज जोड़े बनाए गए हैं इस आयत की रूह से भी वो अननेचुरल है, एबनॉर्मल है, वो नॉर्मेलिटी नहीं है, ये जोड़ा बन ही नहीं सकता, मर्द का मर्द के साथ या औरत का औरत के साथ। तो यहां से हमें पता चला कि उसका जोड़ा बनाया अल्लाह ने किसके साथ, हवा के साथ, औरत के साथ। वह बस्सा, और फैला दिए, मिनहुमा उन दोनों से, रिजालन कसीरम व निसा, बहुत सारे बेशुमार मर्द और औरतें, वो दो थे, उनसे अल्लाह ताला ने कितनी इंसानियत को पैदा फरमा दिया कि देखें आज अगर बीबी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम आ जाएं तो वो कितने हैरान हो जाएंगे, कितनी मखलूक है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ह्यूमंस, तो ये उनकी ही औलाद है सारे, चाहे वो काला है, चाहे गोरा है, चाहे कोई भी जुबान बोलता है, चाहे वो चपटी नाक वाला है या सीधी नाक वाला है, चाहे वो किसी भी कबीले कुंबे कौम उससे ताल्लुक रखने वाला है, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाला है, वो सब इन्हीं एक आदम और हव्वा की औलाद। और ये बताने से हमें क्या पता चलता है, बहुत सारी बातें हमें समझ में आती हैं, और वो ये कि जब भी इंसानों को देखो तो ये बात याद रखो कि हमारे अम्मा और अब्बा एक ही थे, तब आपको उससे नफरत दुश्मनी ये नहीं पैदा होगी, बल्कि दिल के अंदर खैरख्वाही पैदा होगी। ठीक है, जब देखें आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं कि आपको पता चलता है इसके और हमारे परदादा एक ही थे, तो कितना वो अपना लगने लगता है, कितना वो अच्छा लगने लगता है, कितनी उससे खैरख्वाही और हमदर्दी हो जाती है। यहाँ पे तो लोग एक बरादरी वालों के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, अच्छा आप फलां बरादरी से, हम भी उससे, तो फौरन उनके साथ ऐसे शीरो शक्कर हो जाते हैं कि तो हमारे अपने, और कहाँ हमारे तो सबके वालिदैन एक ही हैं, हमारा ओरिजिन सेम है। इससे आपस के अंदर कितनी हमदर्दी खैरख्वाही के जज्बात होने चाहिए, और जब खैरख्वाही होगी तभी आप किसी को खैरख्वाही वाला पैगाम भी पहुंचा सकेंगे ना, नफरतों के साथ ये दीन का पैगाम नहीं आगे जा सकता, नफरतों के साथ, कीनों के साथ, दुश्मनियों के साथ, ये ऐसे वैसे इनके साथ, फिर ऐसे जज्बात रखते थे आप कैसे किसी के साथ खैरख्वाही कर सकते हैं, कैसे किसी को वो पैगाम दे सकते हैं जो कि अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाया। तो ये समझना चाहिए कि ये हमारे अपने ही है, क्योंकि हम एक ही वालदेन की औलाद हैं। और दूसरी बात ये कि देखें, जब पता चल जाता है कि एक ही वालदेन थे, तो यहां से अल्लाह ताला ने जड़ काट दी रेसिज्म की, रेसिज्म खत्म, आप चाहे किसी रंगो नस्ल से हैं, है तो एक ही माँ बाप की औलाद ना, माँ बाप के बच्चे होते हैं, कोई एक बच्चा ज्यादा गोरा होता है, कोई कम होता है। तो यहाँ पे सारे जब एक ही औलाद है तो फिर किस बात की बर्तरी, किस बात की एक दूसरे के ऊपर ये कहना कि हम उससे ज्यादा बढ़ के हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा खानदान इससे ज्यादा आला है, सिर्फ इसलिए कि हम जो जुबान बोलते हैं वो इससे ज्यादा मतलब अच्छी जुबान है, खुद ही बना ली अच्छी जुबानें भी, और ये तो कमतर है और हम ज्यादा है, या खुद ही निकाल लिए ये तरीके, और या हम फलां जगह के रहने वाले हैं इसलिए हम आला हैं, हमारा ताल्लुक फलां नस्ल से है इसलिए हम आला हैं, या हम बहुत अमीर हैं इसलिए हम आला हैं। ये सारी चीजें खत्म हो गई ना, तुम तो सारे ही एक ही माँ बाप की औलाद हो, फिर आला किस बात पे हुए? आला होने का सिर्फ एक वजह हो सकती है, सिर्फ एक रीजन हो सकता है, और वो है तकवा, कि जिसमें तकवा जितना ज्यादा होगा वो उतना ही दूसरे से ज्यादा बढ़ के होगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, तुम्हें अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है। तो आप मुझे बताएं, आज क्या ये मयार है? कुरान की आयत ये कह रही है, और हमारे मयार क्या है? आला और बढ़ के दूसरों से होने के, कि हमारे पास पैसा बहुत है, या हम उर्दू बोलने वाले हैं, या हम पंजाबी बोलने वाले हैं, या हम पश्तो बोलने वाले हैं, या हम गुजराती बोलने वाले हैं, या हम क्या बोलने वाले हैं, तो हम इसलिए सबसे आला हैं, और हमारी बरादरी भी सबसे ऊपर है, और अपनी बरादरी के किस्से कहानियां, और दूसरों को ना ये तो बड़ी घटिया बरादरी के हैं। आपको पता है ये हिंदुओं के अंदर चीजें नहीं, ये बरादरियों की बेस के ऊपर फखर करना, कोई ब्राह्मण है तो वो शूद्रा को अपने से इतना घटिया और नीचे समझता है, वो कहता है ये भगवान के पता नहीं पैरों से पैदा हुआ हुआ है, और हम आला नस्ल है, हम तो पता नहीं क्या, हमें भी उनके साथ रहते रहते ना तो हमारे अंदर भी ये चीज आ गई कि हम कुछ को किसी का किसी कबीले से होना, किसी बरादरी से होना, ये उसके आला होने की निशानी नहीं है। बरादरी तो अल्लाह ताला ने नामों के लिए बनाई, कि आपकी एक पहचान हो, जैसे आपका नाम है वो आपकी पहचान है, इसी तरह आप किस खानदान से आ रहे हैं ये आपकी एक पहचान है, इसकी बेसिस पे हमने सोच लिया हम सबसे आला है, हमने किसी और में रिश्ता भी नहीं करना, क्योंकि हमसे आला थोड़ी है कोई, सब हमसे घटिया है नीचे है। यहाँ पे तो बताया गया तुम सारी एक ही माँ बाप की औलाद हो, अगर वो घटिया तो फिर तुम भी घटिया, और अगर तुम आला हो तो वो भी आला। तो देखो हमारे आज के मयार, मुझे ना इतना जब भी ये सूरा पढ़ाने लगती हूँ एक बात का इतना दुख होता है, कि अभी मैं आपको बहुत दफा कहूंगी कि जमाना जाहिलियत में ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि मैं जमाना जाहिलियत की बात नहीं कर रही, ये तो आज की बातें हैं, यानी गोया हम आज भी जहालत में रह रहे हैं। इस्लाम आ गया, हाँ इस्लाम 1400 साल पहले आया था, और उसके बाद लोगों ने अपने आप को जहालत के अंधेरों से निकाला था, लेकिन हम तो दोबारा गर्क हो गए उन्हीं अंधेरों में, हमने नहीं उन चीजों को छोड़ा, हमने उनको मजबूती से पकड़ के रखा हुआ, और आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, और ये सिर्फ कुरान में पढ़ने के लिए ही है, क्लासों में नंबरें लेने के लिए, रटने के लिए तर्जुमे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो हम फिर वो ही होते हैं जो हम पहले से थे, उन्हीं अंधेरों के अंदर वही हमारी बातें, वही हमारा माइंड सेट कि नहीं ये तो घटिया है। क्या सीखते हैं हम फिर कुरान से, क्या हमारे सर्टिफिकेट हैसियत रखते हैं, कि अगर हमारे दिमागों से ये चीज नहीं जाती, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, मालदारी की बेसिस पे हो, स्टेटस की बेसिस पे हो, बोलने चालने की बेसिस पे, तो आज देखें दुनिया दुनिया इस मसले से गुजर रही है, और अभी तक इस चीज को वो खत्म नहीं कर पाए कि ये रेसिज्म ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ कलर रिलीजन रेस, ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए वो नहीं कर पाते। आज भी देखें इनके हाँ मसला है, हमारे पास तो ये आयत उतार के ये मसला ही खत्म कर दिया गया, और जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमा दिया, किसी काले को गोरे पे, किसी को गोरे को काले पे, किसी को अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे कोई फौकियत हासिल नहीं है, फौकियत है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पे। वो तकवा वाला चाहे नौकर है आपका, वो आपसे बढ़ के है। वो तकवा वाला चाहे झोंपड़ी में रहता है, वो आपसे बढ़ के है। अगर आपके अंदर तकवा नहीं है तो वो कोई भी जुबान बोलता है, वो चाहे काले रंग का है। क्या हजरत बिलाल काले रंग के नहीं थे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में नहीं क्या बैठते थे? वहीं पे बड़े बड़े सरदार बैठते थे, वहीं पे वो बैठते थे। क्या उनको बाहर बिठा के रखते थे? नहीं, तुम तो नौकर हो जाओ। हालांकि उस सोसाइटी में तो इतना गुलामों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, इतना बुरा सलूक था, ये आप सोच ही नहीं सकते। उनको भेड़ बकरियों जानवरों की तरह समझते थे। कहां उनका स्टेटस रेज किया गया, बराबर का स्टेटस दिया गया। हम तो आज अपने नौकर को अपने बराबर नहीं समझते। गुलाम तो दूर की बात है, गुलाम तो खरीदा होता था ना, हम तो फिर भी नौकर हैं। ये नहीं, ये गुलाम नहीं है, ये हमारी मिल्कियत नहीं है, ये नौकर हैं। हम उनको अपने साथ नहीं बिठाते, हम उनको अपने बराबर नहीं खाना खाने देते, अपने बर्तन नहीं यूज करने देते, ये नौकर हैं। अल्लाह हू अकबर, तुम्हारा तो कोई भी फर्क नहीं है, तुम तो एक ही माँ बाप की औलाद। अब इसके बाद फिर क्या हमारा माइंड सेट होना चाहिए? तो इस आयत को समझें और इसको अप्लाई करें, और ये जो माइंड सेट लेके हम इंडो पाक के मुसलमान एक माइंड सेट के ऊपर है ना, बर्तरी के, बर्तरी, बस हम तो पैदाइशी लिहाज से ही ऊपर है, क्योंकि हमारे ये जो वॉट एवर रीजन, उसको खुदा के लिए निकालें और ये नस्ली, इलाके की और लिसानी बुनियादों पे जो भी आपके जहन के अंदर अपनी अपने आप को ऊपर और करने की जो है ना, इस सोच को खत्म करें। ठीक है, आप एक माँ बाप की औलाद हैं। देखे आदम अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, आपने सब देखा था ना, मेराज पे उनको एक तरफ देखते थे तो खुश होते थे, एक तरफ देखते थे तो रोते थे। इस तरफ उनके वो बच्चे हैं जो कि ईमान वाले, जो आगे बढ़ गए, एक तरफ देखते तो रोते। आप देखो, हम अपने बच्चों के लिए इतने परेशान रहते हैं, इतने फिक्रमंद रहते हैं, उनके लिए रोते हैं। इनका ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ईमान ना चला जाए, ये ना हो जाए। उनकी तो सारी ही औलाद है ना, सब उनके ही बच्चे हैं, तो उनको भी कितनी तकलीफ है। ये वाले मेरे बच्चे कि जन्नत में चले जाएंगे, और एक तरफ को देखते हैं तो ये जन्नत में जाने वाले बच्चे, तो उनके लिए सब सेम है। लेकिन देखो आगे जाके लोगों ने कैसे एक दूसरे के लिए ऐसे जज्बात पाल लिए जो खत्म ही होके नहीं देते। इन मुल्कों में अपनी तरह की रेसिज्म है, हमारे मुल्कों में अपनी तरह का रेसिज्म है। और फिर औरत कोई घटिया मखलूक नहीं है, यहां से पता चला औरत का तो वजूद मर्द से ही निकला है, वो घटिया कैसे हो गई? जैसे औरतों को पहले जमानों में, मिडीवल वक्त में, जब आप कोई देखते हैं इस तरह के इन लोगों के, वो क्रूसेडर्स के जमाने की या इस तरह की वाइकिंग्स के, उसमें आप हिस्ट्री उठा के देखें, आप कभी पढ़ते हैं, तो जाहिर है इन लोगों के पास तो इस्लाम नहीं था। वो औरतों को इस कदर घटिया समझते थे कि यानी औरत की कोई वैल्यू नहीं थी। तो हालांकि औरत का बताया गया वो मर्द का ही हिस्सा है, इसीलिए मर्द मायल होता है ना औरत की तरफ,